الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. توكل، الله جل شانه پر بروسے کا مقام. یعنی انسان اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے وسائل پر، اس کے قدرتوں پر اس کا یقین ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس پر وہ بآسانی عمل کرتا ہے، اس کو یعنی اس یقین کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی وہم نہیں ہوتا، اور اس کام کو کر. وہ مثلاً ایک شخص سے زکوٰۃ، اس پہ فرض ہے، تو زکوٰۃ سے پیسے کم ہوتے ہیں بظاہر، تو اگر اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، کہے گا اللہ پیسہ مطلوب نہیں ہے، جو پیسہ سے کام ہوتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پیسے کی مسئلہ تو نہیں ہوگا. اگر ادھر سے ہم دیتے دوسری جگہ سے دے دیں گے تو اس کو پریشان نہیں ہوتی، لیکن جو ایسا نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے پیسے کم ہو جائے گا تو پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اس طرح سود لیتا ہے یا رشوت لیتا ہے، وہ بھی غریب ہونے سے کی ڈر کی وجہ سے لیتا ہے کہ کہیں میرے مسائل نہ ہو جائیں. آج کل چونکہ ہم لوگوں نے کچھ جو خواہشات ہیں ان کو ضرورت کا درجہ دیا ہے، بس ہمارے پاس کار کا ہو جانا، پکے مکان کا ہو جانا، یا اس قسم کے اور دوسری خواہشات ہماری جو ہوتی ہیں ان کو ہم ضرورت کا درجہ دیتے ہیں، نتیجتاً پھر اس کے لیے جو غلط کام ہوتے ہیں وہ بھی کرنا مجبوری سمجھتے ہیں. یہ جو مجبوری سمجھنا ہے یہ توکل کے خلاف ہے، یعنی توکل مطلب نہیں ہے. اور اگر کوئی اس کو ظاہر مجبوری نہیں سمجھتا اور شریعت پر عمل کرنے میں یعنی مطلب کوئی مسئلہ اس کو نہیں ہوتا تو اس کا توکل صحیح ہے. باقی توکل مستحب اس کا ایک درجہ ہے جو کہ ہر ایک نہیں کر سکتا، اور نہ ہر ایک کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ظاہری اسباب ہے کمانے کے ان کی بھی پرواہ نہ کرے، ہاں جی، اور ظاہر دین کے شعبوں میں، جس شعبے میں لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، تو یہ مطلب آدمی نہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے جی، میں مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک دے گا. یہ توکل مستحبر کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک کا وہ قلبی حالت یہ نہیں ہوتی ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے امان اللہ سالک، یہ علائی کے علاقے کے تھے، تو کلاس فیل ہوتے ہمارے، غائب ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا تھا کدھر گیا. بعد میں پتہ چلا جی تبلیغ میں گئے ہیں، اور ایف ایس سی کا امتحان سر پہ تھا، تو ہم حیران ہو گئے کہ انہیں دنوں میں اس نے جانا تھا، یہ تو طریقہ نہیں ہوتا. خیر واپس آ گئے، بالکل چند دن ہی امتحان میں رہ گئے تھے. میں نے اسے پوچھا بھائی کدھر گئے، کہتے میں تبلیغ میں گیا تھا. میں نے کہا امتحان نہیں دینا تھا، کہتے وہ تو اللہ پر ہے. میں نے کہا اس کا مطلب آپ نے تبلیغ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیے کیا مطلب، میں نے کہا اب یا تو فیل ہو جائے گا یا تیرے تیرے ڈویژن آ جائے گی، اور تو اس کو تبلیغ کے کاتے میں ڈالے گا. تو مجھے بتاؤ کہ تو نے تبلیغ کے بزرگوں سے اجازت لی تھی کہ میرے امتحان ہے تو میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا تو پھر ان کی ذمہ داری تو نہیں، تیری ذمہ داری ہوئی نا. ہاں تو ان کا اگر کو بتاتا اور پھر بھی وہ کہتے نہیں تم چلے جاؤ تو پھر تو ان کی ذمہ داری ہوتی. اب تو نے ان کو بتایا تو ہے نہیں، تو نے غلط حرکت کی ہے. اب مجھے ڈر ہے کہ تو تبلیغ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. بالکل وہی ہوا، اس کی تھرڈ ڈویژن آ گئی اور ہمیشہ کے لیے تبلیغ کو سلام کر دیا. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ توکل غیر مطلب جو ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ نہیں چاہیے، نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے اس کو یہ حکم نہیں دیا. تبلیغ کا کام تو ہر وقت ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے. ورنہ تبلیغ کے بزرگ کہتا ہے کہ ये जब इम्तिहान तुम्हारे सर पर हो तो तुम तबलीग में निकल जाओ। हाँ जी, छुट्टियों में जाओ, तलबा से तो स्टूडेंट्स की छुट्टी में कहा जाता है ना। तो ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दे दी कि लोग अपनी मर्जी करते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो उनको ये उस खाते में डाल लेते हैं। तो तवक्कुल मुस्तहब जो होता है ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो इसका अहल इसके अहल है। मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह, वो एक दफ़ा उन्होंने हाजी इमदादुल्लाह मुजरमा की रहमतुल्लाह अलैह को लिखा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपने मुलाजमत ख़त्म करके आपके पास आ जाऊँ या दिन का काम करूँ, कुछ ऐसी बात थी। अरे फिर नहीं, खबरदार ऐसे ना करना, मुलाजमत न छोड़ना। हाँ जी, कुछ अरसे के बाद उन्होंने ख़त लिखा कि हज़रत मैंने छोड़ दिए, पर मैं मुबारक हो। तो उस पर लोगों ने कहा हज़रत आपने पहले तो मना किया था, अब मुबारकबाद दे रहे हैं, क्या मसला है? पर मैं पहले उसका तवक्कुल कच्चा था। हाँ जी, लिहाजा उस वक़्त में नुकसान हो जाता, अब उसका तवक्कुल पक्का हो गया है, लिहाजा उसको कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी, तो ज़ाहिर मशाइख इस चीज़ को जानते किस वक्त कच्चा है किस वक्त पक्का है, फिर वो उसके मुताबिक बात करते हैं। तकवा, अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरने का मुकाम। सुभानअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, बुनियादी बात है। हिम्मत, अपनी तवज्जो से किसी शागिर्द या मुरीद को किसी मतलूब हाल पर लाने की इस्तेदाद। एक हिम्मत तो हमारी होती है ना, वो जो हम कहते हैं भाई हिम्मत करो, बेहिम्मत ना हो जाना, हिम्मत करो, वो और हिम्मत है। वो हिम्मत इसको कहते हैं कि आप अपनी तवानाई को यकजा करके यकसू करके इस काम को कर गुजरो, मुंतशिर मिजाज न हो, ये हिम्मत कहलाता है। लेकिन जो तसव्वुफ़ की इस्तेलाह में हिम्मत है वो इसको कहते हैं कि अपनी तवज्जो किसी पे मरकूज़ करना। हाँ जी, और फिर उस तवज्जो से किसी शागिर्द या मुरीद में कोई ख़ास बात पैदा करना जो शेख अकबर रहमतुल्लाह ने फरमाया ना कि आरिफ रहा हिम्मत न बाशत। आरिफ को, जो आरिफ होता है वो हिम्मत यानी वो तवज्जो नहीं करता किसी पे। हाँ जी, तो वो हिम्मत है। बाकी ये है कि तवज्जो से पढ़ाना, ये तो ठीक है, या मुरीद के बारे में दिल से दुआ गो होना कि अल्लाह जल्ला शानहू कोई चीज़ नसीब फरमा दे, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन वो जिसको हम कहते हैं ना जैसे सेफी टाइप लोग, हाँ, वो नेटिज़म की तरह ये जो तवज्जो करते हैं, तो वो मतलब जान वो लोग इसको हिम्मत कहते हैं, हालांकि हम हिम्मत उसको कहते हैं कि अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जो होकर उसके लिए कोई चीज़ तलब करना। ये तजल्ली, किसी शेय के दूसरे या तीसरे या चौथे चौथे या जहाँ तक अल्लाह चाहे मरतबे में ज़ाहिर होने को तजल्ली कहते हैं। हिजाबात, हिजाबात मतलब ये कि जो तनज़ुल जिसको हम कहते हैं कि असल की तरह तो नहीं लेकिन उससे कम जितनी की कोई बर्दाश्त कर सके, उसमें जो ज़ुहूर होता है इसको भी तजल्ली कहते हैं, तनज़ुल भी कहते हैं और तजल्ली भी कहते हैं। मतलब तनज़ुल से मुराद ये है कि अब इसमें बात यह है कि तनज़ुल और तजल्ली का ताल्लुक यानी उसके साथ है, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए तजल्ली तनज़ुल है और मखलूक के लिए उरूज है। मतलब मखलूक जो है ना वो अल्लाह ताला की तजल्ली से अदम से वजूद में जो आता है तो उसका जो मतलब ये ज़हूर होता है वो यूँ कह सकते हैं कि यानी उरूज होता है, यानी उसको अपने असल से ऊपर ले जाता है। हाँ जी, अपने वजूदी तजल्ली के ज़रिए से। और ये जो अल्लाह जल्ला शानु की अल्लाह जल्ला शानु की जो ज़ात है वो तो ज़ाहिर मतलब वराउल वरा है, उसको कोई देख भी नहीं सकता, तो उसको उसके बर्दाश्त के हद तक लाने के लिए जो निज़ाम होता है तनज़ुल यानि उससे नीचे आना वो तजली कहलाता है। जी, हाँ हाँ ठीक है। तजल्ली सूरी अभी आ रही है ना चीजें, तजल्ली सूरी। जब सालिक अल्लाह ताला का जिक्र करता है और अल्लाह ताला की जात की मौजूदगी पर यकीन होने की वजह से उसका ख्याल अल्लाह ताला की तरफ जाता है, तो कुव्वत मुद्रिका और कुव्वत वाहिमा एक ऐसी वहमी सूरत तराशता है। वहमी यानी असली नहीं होता, उसके जहन का सोच होता है कि जिसमें शिक्ल रंग और जहत नहीं होती, यानी जैसे चूंकि उसको पता होता है कि अल्लाह ताला किसी खास सिमत में नहीं है, और मतलब यह है कि शिक्ल भी नहीं है, रंग भी नहीं है, तो ये कोई नई चीज़ जो जहन में उसका बनता है ना कुव्वत वाहमा से के ज़रिए से जो बनता है, हाँ ये मतलब तजली सूरी की सूरत में, लेकिन यकीन के लिए एक सूरत बनाता और दुरुस्त तो ज़रूर करता है ताकि उसकी शरह व तफसील पेश करे, या उससे कुछ उसको समझने की वह कि उसको सलाहियत पैदा हो जाती। और बाज़ अजहान में यकीन सिर्फ सूरत ख्याली की शक्ल में फैल जाता है, यानी कोई ख्याल सा जो अननोन किस्म की चीज़ होती है, पहले कभी इसका तजर्बा नहीं होता, तो इसको तजल्ली सूरी कहते हैं। यानी गोया अल्लाह जल्ल शानू की मौजूदगी जो है उसको किसी ख़ास गैर मुतय्यन सूरत से जो मतलब महसूस होता है इसको तजल्ली सूरी कहते हैं, और वो इसके वहम की बात होती है, वो असल नहीं होती, वो सिर्फ़ उसकी वहमी सूरत होती है। तो इस वजह से कहते हैं कि जब भी कभी किसी को ऐसा ख्याल आ जाए तो उसको अल्लाह की ज़ात न समझें, ख्वाब में भी अगर आ जाए तो उसको अल्लाह ताला की ज़ात न समझे, अब सिर्फ़ और सिर्फ इसको समझे कि मेरे अल्लाह की तरफ तवज्जो हो गई, तो उसकी वजह से कोई जहन में मेरी चीज़ बन गई, वो अल्लाह नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब बाकी जो बुज़ुर्गों की दिल के ऊपर जो तजल्लियात होती है वो असल में यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह जल्ल शानू की रहमत का, उसकी तरफ जो रहमत के नुज़ूल का उसकी तरफ जो तवज्जो होती है वो उसको तजल्ली कहते हैं। यानी मतलब यह है कि गोया कि इंसान का जो दिल है उसके ऊपर जो अल्लाह जल्ल शानू की मतलब जो है ना वो तरफ से रहमत की नज़र होती है, फजल का नज़र होता है, तो वो एक मुतजल्ला सूरत में गोया कि वो आता है, यानी उनके दिल के ऊपर उसका दिल उसको महसूस करते हैं अनवारात की सूरत में। लेकिन वो अनवारात भी अल्लाह ताला तो नहीं होते ना, वो सिर्फ जो मतलब यह है कि गोया कि महसूस करने का एक निज़ाम होता है, मतलब अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो तो अनवारात भी नहीं है, हाँ तो उसको महसूस करने का एक निज़ाम होता है जो कि उसके और बंदे के दरमियान होता है, और ये भी तनज़ुल की एक सूरत है, यानी तनज़ुल से मुराद ये है कि हकीकत नहीं बल्कि हकीकत तक पहुँचने का एक रास्ता। अब समझ में आ गई बात। आपने कभी फॉरेन ऑफिस वाले लोगों को बात करते हुए देखा है? फॉरेन ऑफिस के जो लोग होते हैं, ये नहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई उनसे कोई पूछता है जी आजकल आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस मसले में, क्या आप करना चाहते हैं, तो बोलते हुए कभी सुने उनको? वो अल्फाज छुपा छुपा कर बोलते मीन्स यस दैट कुड बी नो इट माइट बी। हाँ वो क्यों करता है? क्योंकि मामला बड़ा नाजुक होता है, वो अपने ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ कह दे जो उसके मुल्क की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो तो उसकी दुशामत आ जाएगी, ठीक है ना, उसकी शामत आ जाएगी। तो ऐसी सूरत में हम जब यहाँ पर बोलते हैं तो हमारी ज़ुबान भी गगियाने लगती है, मतलब यह है कि वो चूँकि नाजुक मौजू है तो ऐसी सूरत में हम लोग खुल के बात नहीं कर सकते, ज़रा मोहतात होकर बात करनी पड़ती है। मोहतात इस सूरत में कि कभी हमारी ज़ुबान फिसल सकती, कभी आपका जहन फिसल सकता है, और मैंने आपको वैसा मौका तो नहीं देना कि आपका जहन फिसल कर कोई और चीज़ सोचने लगे, तो मुश्किल तो पड़ ही जाएगी ना। तो ये नाजुक मौजू है, इस वजह से इस पर कलाम भी कम ही किया जाता है, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात के साथ बात है, कोई मामूली बात तो नहीं है, हाँ जी, तो उसमें काफ़ी मतलब मुश्किल महसूस होती है, हाँ जी होता है। कुव्वत वाहिमा, ख्याल की कुव्वत जिससे इंसान तसव्वुर कायम कर लेता है, ख्याल एक कुव्वत है, मतलब ज़ाहिर है इंसान ख्याल में कोई भी शक्ल बना सकता है, ये कुव्वत वहम है। ख्याल में कोई भी काम इंसान, जिसको कहते हैं ना, जिस तरह वो हो तो वो उसको नज़र आता हो। बस मैं सोचता हूँ कि मैं सीढ़ियों पर उतर रहा हूँ, सोचो आ रहे जहन में। हाँ, तो ये आप अपने ख्याल के जहन से, मतलब ख्याल की कुव्वत से आप ये वो कर लेते हैं कि मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ या सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ, मैंने फलां पानी का वाल्व बंद कर दिया। हाँ जी, तो आपका उसके एक जिसको कहते हैं ना गैर मुतयन किस्म की सूरत भी बनती है और आपको उसका एहसास भी होता है। तो ये ख्याल की कुव्वत वाली बात है, कुव्वत वहम इसको कहते हैं, कुव्वत मुद्रिका। वो कुव्वत जिससे अशा व हवाल का इदराक हासिल होता है। हाँ जी, मतलब यह है कि मैं जैसे मिसाल के तौर पर एक पागल आदमी होता है तो उसको इदराक नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ। हाँ जी, उसके मुताबिक वो ज़्यादा उसकी परवाह नहीं करता। हाँ जी, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये मौलाना रहमान साहब मतलब मस्जिद में थे तो एक लड़का था, उस अब तो खैर बड़ी उम्र का है उस वक्त, यानी वो दीवाना टाइप नहीं होता। हाँ जी, तो वो अपने ख्याल में मौलाना का जो है ना कपड़े झाड़ रहा था, यानी कि उसकी इज्जत कर रहा था। तो झाड़ू लेकर मौलाना जिसको कहते कपड़ों के ऊपर झाड़ू पहनने लगा। सब लोगों ने क्या करूँ, देखा अब जो हो गया होने दो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब उसको ये इतराक तो नहीं था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो अपने ख्याल में बड़ा अच्छा कर रहा था। ज़ाहिर है मतलब वो तो अपने ख्याल में उसकी सफाई कर रहा था, लेकिन सफाई के बजाय तो कुव्वत मुद्रे का ये होता है कि वो जो कर रहा होता है उसका उसको इदराक होता है कि मैं क्या कर रहा होता हूँ, या दूसरे लोग जो कर रहे होते हैं उसका भी उसको इदराक होता है, जो चीज़ें होती हैं उनका भी उनको इदराक होता है। तो इदराक सही अंदाज में अगर किसी को हो तो वो सही चीज़ें उससे वजूद में आती है, सही काम वो करते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर यही बच्चा जैसे कर रहा था इस किस्म की चीज़ें भी हो सकती है। एतबार, हकायक के बामी ताल्लुक से हकायक का समझ में आना एतबार कहलाता है। यानी एक का जो मतलब तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार को मुमासिल समझकर, उसके तरह समझकर दूसरी चीज़ पर इसको क्यास करना और उसके उसके बारे में अंदाजे लगाना, ये एतबारी इल्म होता है। मिसाल के तौर तो पर इल्म है तो आप उसको रोशनी मान लेते हैं, तो रोशनी जिस तरह फैलती हुई नज़र आती है तो आपको तसव्वुर होता है कि भाई इल्म भी इस तरह फैलता नज़र आता है, बल महसूस होता है, तो एक एतबार इल्म है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह ने तो इससे बहुत काम लिया है कि वो एतबार इल्म के ज़रिए से लोगों को चीज़ें समझाते हैं। तो क्यों, वजह क्या है कि सिमिलर प्रोसेस जिसको हम कह सकते हैं ना, सिमिलर प्रोसेस कि एक ही तरह की चीज़ें जैसे मिसाल के तौर पर वजूद में आती है, तो अगर आप एक को समझते हैं तो उसके ज़रिए से आप दूसरे को भी समझ सकते हैं। तो आप कहते हैं चूँकि इस तरह है, ये इसी की तरह है, तो उसके किसी चीज़ को समझने से आपको उसका समझना भी महसूस हो जाए। हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मतलब वो जो है ना, वो अभी मेजर साहब कह रहे हैं जैसे तजरीद तफरीद है, तो तजरीद तफरीद में क्या होता है, मतलब ये है कि जैसे मिसाल में दिया तो मिसाल भी एक एतबारी है ना, कि आप जो है ना जैसे जाना चाहते हैं लाहौर में, किसी स्ट्रीट में कोई घर है, उस घर में कोई कमरे में कोई शख्स बैठे, उस तक आप जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से तो मोटरवे पे जाना चाहेंगे ना, तो यहाँ तो मोटरवे, तो मोटरवे से फिर लाहौर टोकर न्याज बैग सब देखते मुझे कहाँ जाना है, तो वहीं पर आप जाएंगे, फिर उस इलाके की तरफ आपका रुख होगा, फिर वहाँ इलाके में फिर आप उसके स्ट्रीट की तरफ रुखोगा, उस स्ट्रीट में फिर आपका उस घर की तरफ रुख होगा, फिर उस घर में आपका उस कमरे की तरफ रुख होगा, फिर उस कमरे में उसका मुझे ना मतलब उस आदमी की तरफ रुखोगा। तो अब ये देखो कितने आपने फोकसिंग किए, तो अब ये जो फोकसिंग का निज़ाम है स्ट्रीट वाला, अब उसी से आप ये अंदाज़ा लगाए कि तसव्वुफ में आपकी तजरीद कैसे होगी। यानी पहले आप जो है ना मतलब ये कि आपने एक जिसको कहते हैं ना, यानी एक तरीके से उसको समझ लिया, फिर उसके अंदर सफाई आ गई, ज़्यादा चीज़ें खुल गई, फिर आपने उसको दूसरे तरीके से समझ लिया, फिर आपने उससे मज़ीद सफाई आ गई, फिर आपने उसको और मज़ीद यानी बेहतर तरीके से समझ लिया, और होते होते मतलब आपके ऊपर चीज़ें खुलती जाती हैं, और माँ से वह अल्लाह से यानी जो अल्लाह नहीं है उससे आप अल्लाह ताला की तरफ वो बढ़ते रहते हैं। अब ज़ाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि आप अल्लाह के पास इस तरह पहुँचते हैं जिस तरह वह शख्स था, क्योंकि वो मामला और है, ये वराल वरा जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम अल्लाह जल शानू के जो मतलब जो है ना वो यानी के सामने होने का जो यकीन है या अल्लाह जल शानू के लिए काम करने का यकीन है, उसमें जो सफाई सुथराई आएगी वो तजरीद तफरीद कहलाता है। आलम मिसाल, ये एक आलम है जो आलम अरवाह और अजसाम के दरमियान है। आलम कहते हैं दुनिया पूरा एक निज़ाम, आप आलम उसको कह सकते हैं। तो ये आलम अरवाह यानी जो अरवाह का निज़ाम है और अजसाम जो अजसाम का निज़ाम है, ये जैसे आलमीन जिसको जमा कहते हैं ना रब्बुल आलमीन, तो ये आलम जो होते कोई भी किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो अरवाह का जो आलम है और अजसाम का जो आलम है, तो इसी तरीके से कुछ और जो जिसको कहते हैं ना ये आलम भी है, उनमें से एक आलम मिसाल है, और वो क्या है कि जो कुछ आलम अजसाम में मौजूद है उसकी नज़ीर आलम मिसाल में मौजूद है। यानी यूँ कह सकते हैं यहाँ जो मौजूद है, मसलन आप मौजूद है, तो आलम मिसाल में भी इस तरह आपके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी जो जिसको कहते हैं ना वहाँ से आप की जो सूरत है वो लाई गई है। बल्कि यूँ कह सकते हैं कि हज़रत शाहुल्लाह रहमत साहब ने तो यहाँ तक फरमाया था कि तीन अज्जा है ना रूह के, तो जो रूह मलकूती है वो मतलब ज़ाहिर वो उसका ताल्लुक आलम मिसाल के साथ बताते हैं कि वहाँ से उसकी सूरत आती है, और ये बाकी मादा की सूरत में वो मिल जाता है, तो फिर ये मतलब उससे वो बन जाता है, इंसानी रूह बनता है। तो आलम मिसाल से उसको यानी वो लेते हैं, यानी कोई तारफ़ उधर से करवाया जाता है, बाकी चीज़ें तो यकसा होती है, लेकिन वहाँ से एक ख़ास पार्टिकुलराइजेशन जिसको हम कहते हैं वो पार्टिकुलराइज कर लेते हैं कि ये फ़लाँ है। तो आलम मिसाल में पहले उसके वजूद आता है, फिर उसके बाद आलम अजसाम में इसका वजूद आता है। हादसा, जिस जरिए से किसी मुद्रक का इदराक होता है उस वो उसका हादसा होता है। यानी मसलन जैसे मेरा आँख है तो उसका इसमें हिस है, तो मैं जो है ना मतलब यह है कि उसके ज़रिए से देखने से उसका इदराक कर लेता हूँ, हाँ जी, तो मेरे आँख उसका हादसा है, हाँ जी। और इस तरीके से जो है ना मतलब मेरे कान है, मैं किसी की आवाज़ से सुन के इसका इदराक करता हूँ, तो मेरे कान जो है ना मतलब उसका हादसा है। मुस्तहलक, फ़ानी को कहते हैं, हलाक हो गया, मुस्तहलक का मतलब ये कि जो हलाक हो गया, तो फ़ानी भी उसी तरह है। लाहूत, मुकाम महवियत या मुकाम फना, ये जहात हदूद से मुनज़्ज़ा है। चूँकि हमारे जहन में इन चीज़ों का इदराक मुमकिन नहीं, हमें इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं हो सकता और नहीं है, लिहाजा हमने कह तो दिया जिहाद और हदूद से मुनज़्ज़ा, लेकिन जिहाद और हदूद से मुनज़्ज़ा क्या होता है इस पे हैरत ही हो सकती है। तो ये मुकाम हैरत है भाई, किसी की चीज़ की सिमत नहीं तो क्या है, आप जहन मिला सकते हैं उसको, और हुदूद नहीं है तो ये यकीन तो है कि ऐसा ही है, लेकिन आपको इसका इदराक हो नहीं पा रहा, नहीं हो सकता, जब नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है, हैरत। एक और हैरत का पस मंजर मैं ज़रा अर्ज़ करूँ, अल्लाह जल्ल शानू की मोहब्बत किसी को हासिल हो, तो मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो इंसान को उस महबूब के बहुत करीब कर देती है, कल्बी तौर पर करीब कर देती है, मतलब ये हर वक्त उसको अपने पास इन गोया कि उसके साथ होता है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, आज मतलब ठीक है ना, तो मतलब यह कि वो आपके पास होता। और मारिफत, मारिफत में क्या होता है, इदराक होता है। अब इदराक है अल्लाह ताला की अजमत का, अब अल्लाह ताला की ज़ात कितना अजीम है और हम कितने हकीर हैं, तो जितने जितना अल्लाह ताला की अज़मत का इदराक हुआ उतने उतने अपने हकारत का इदराक होगा। तो लिहाजा हम अप उसकी अज़मत के बकदर और अपनी हकारत के बकदर दूर हो रहे होंगे, मतलब यह कि करीब नहीं, क्यों जाए करीब तो ज़रा बराबर के लोगों के साथ होते हैं ना, तो या तो बराबर कहाँ है, तो दरमियान में फ़र्क कितना है, लामहदूद और महदूद वाली बात है। तो अब लोग लामहदूद महदूद के दरमियान जितना फ़र्क है उसके होते हुए क़ुरब क्या चीज़ होगी। तो मोहब्बत करीब कर रहा है, मारिफत दूर कर रहा है, तो इन दोनों का मजमुआ हैरत ही है और कुछ नहीं है। आदमी मुकाम हैरत में चला जाता है और उस वक्त यही मुकाम हैरत ही हक है, क्योंकि ये दो हक चीज़ों के साथ मिला हुआ है, यानी अल्लाह ताला महबूब हकीकी है ये भी हक है, और अल्लाह ताला मतलब जो है वो जिसको कहते हैं ना अजीम है और उसकी अजमत का कोई हद नहीं है ये भी हक है। अब दो हक होने चीज़ों को जो मिला के जो हैरत हो रही ये भी हक है। इस वजह से इस हक पर सटपटाना नहीं चाहिए बल्कि यही मंजिल है और इससे आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता। हाँ हैरत में बढ़ोतरी हो सकती है, हाँ हैरत में बढ़ोतरी हो सकती है, हैरत बढ़ सकती है जितना जितना आपकी अजमत का अदराक मजीद होगा और या जितनी मोहब्बत मजीद बढ़ेगी तो आपका इदराक दोनों चीज़ों का इदराक ज़्यादा होगा, नतीजतन हैरत बढ़ेगी। तो ये मकाम हैरत कहलाता है, ठीक है ना। नासूत अजसाम व महसूसात की दुनिया, यानी हम जो कुछ देख रहे हैं ये नासूत है, और ज़ाहिर मतलब है कि जो बात को हम नहीं देख, जैसे अरवाह को नहीं देख सकते, फरिश्तों को नहीं देख सकते, ऐसी सूरत में वो जो है उसको मलकूत की दुनिया कहते हैं, मलकूत की दुनिया। नासूत अजसाम महसूसात की दुनिया है, मलकूत फरिश्तों और अरवाह की दुनिया है, और जबरूत आसमानी दुनिया और सितारों से ऊपर का मुकाम है। हाँ जी, और फिर हम औस्त ये वहदुल वजूद की सूरत है किस्म की, यानी यूँ कह सकते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तेरे क्या कहते आगे क्या कहते हैं, हाँ जी, तो ये हम औस्त से मुराद यही है कि आप जो है ना मतलब तमाम चीज़ों से नज़र आपकी अल्लाह ताला की तरफ ही आती है। तो इस वजह से आप कहते हैं कि हर चीज़ में खुदा है, ये नहीं कि नऊज़ बिल्लाह मिन्ज़ा वहाँ कन्फाइंड है, महदूद नहीं है, लेकिन हर चीज़ से आपके खुदा की तरफ नज़र जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिसकी ज़ुबान कुल जाए, यानी जिसको कहते हैं ना जहू ज़ाहिर उस पर ज़ाहिर हो जाए, इसमें ज़ाहिर, तो फिर वो उसकी ज़ुबान बंद नहीं होती, वो चलती रहती है, तारीफ़ करता रहता है अल्लाह ताला का। क्यों ज़ाहिर है, जिसको भी देखेगा तो उसको भी ज़ाहिर, मतलब उससे उसको अल्लाह याद आएगा, तो अल्लाह ताला की कुदरतों का उसको अंदाज़ा होगा, अल्लाह जल शानो के फ़ज़ल का होगा, अल्लाह के कुरब का होगा, तो एक लामतना ही सिलसिला है। तो इसमें ज़ाहिर का असर ये होता है, उसमें बातिन का ये होता है कि अल्लाह जल शानो की ज़ात के बारे में चूँकि कोई भी वो नहीं कर सकता, इसका अहाता नहीं कर सकता, लिहाजा जितना जितना उतने गहराई में जाएगा तो उतना उतना माहवियत में जाएगा, उतना उतना ही उसकी ज़ुबान बंद होती जाएगी, बात ही नहीं कर सकेगा। तो इन दोनों के बारे में रवायत मौजूद है कि जिसकी ज़ुबान खुल गई वो रुका नहीं, और जिसकी ज़ुबान बंद हो गई तो गुंग हो गई। आई तो ये हम उस खातिर वो ख्याल जो दिल पर छा जाए, हाजस दिल में गुजरने वाला कोई भी ख्याल, अहदीस नफ्स, नफ्स की बात है, यानी नफ्स की ख्वाहिशात पर मबनी ख्यालात, नफसानी ख्वाहिशात इंसान की होती है, तो उससे जो ख्यालात बनती है वो नफसानी ख्वाहिशात के जो ख्यालात होते हैं ये अहदीस नफ्स कहलाते हैं। हाँ जी, अहदीस नफ्स कहलाते हैं। हदीस कहते हैं बात को, तो बातें जो नफ्स की ख्वाहिशात से बनती है उसको हदीसे नफ्स कहते हैं। और कहते हैं जी हमारे दिल में ख्याल आता है शैतान तो इस वक्त बंद है तो क्या है। मैंने कहा भाई नफ्स तो बंद नहीं है ना, नफ्स तो मौजूद है, तो यह हदीसे नफ्स है। हाँ जी नफ्स की बातें हैत वहदानी, तमाम लताएफ बमा पूरा जिस्म हैत वहदानी कहलाता है। असल में यही बात है जिसमें मुमताज है इंसान कि इसमें हर किस्म की चीज मौजूद है। जैसे देखो ना दो दो की जोड़ियां नफ्स में भी है, दिल में भी है, अकल में भी है, और बहुत उरूज की सलाहियत भी है, बहुत हाँ जी मतलब गिरने की सलाहियत भी है। हाँ जी अगर अपने आसन तकवीम का इदराक कर ले उसके मुताबिक चले तो फरिश्ते भी उस पर रश करने लगे। और अगर मतलब अपने नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ा तो शैतान भी इतना नहीं नीचे जा सकता जितना गिर गया। उसकी मैं आपको वजह बता दूं, शैतान की हर शर जो है वो आजाद नहीं है। बस शैतान जो है आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता, सिर्फ वसवसा डाल सकता है। अल्लाह जल्ले शानुहु का बहुत प्यारा निजाम है। अब देखो शैतान को सलाहियत दी है वसवसा डालने की, न शैतान को सलाहियत दी है मुसलसल क्यामत तक जिंदा रहने की, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, इसकी इसलाह नहीं कर सकते। लेकिन इसका जो शर है सिर्फ वसवसे तक महदूद कर दिया। जबकि इंसान जो है इसका जो नफ्स है ये फानी है, लेकिन इसका जो शर है हर किस्म की चीज में मौजूद हो सकता है। मसलन एक इंसान अगर बिगड़ जाए शैतान बन जाए तो अब उसका कलम भी गलती के लिए इस्तेमाल होगा, उसका पैसा भी नुकसान के लिए इस्तेमाल होगा, उसका कुव्वत भी उसके लिए मतलब नुकसान के लिए इस्तेमाल होगा, उसकी जहानत भी, उसके ताल्लुकात भी, उसका रसूख भी। तो ज्यादा खतरनाक है शैतान, ज्यादा खतरनाक है। शैतान तो आपको सिर्फ वसवसा डाल सकता है, उसको अगर वसवसे ना माने और परवाह ना करे तो शैतान आपके साथ क्या कर सकता है। तो ये जो अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया ना कि वो कहेगा लूमू अनफुसकुम, अपने नफ्सों को मलामत करो। हाँ जी ला तलूमूनी लूमू अनफुसकुम, मुझे मलामत ना करो अपने नफ्सों को मलामत। मैंने तुमसे झूठा वादा किया था, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा, तुम लोग उनकी बात क्यों नहीं मानी, उसकी बात क्यों नहीं मानी, मेरे को जबरदस्ती तो नहीं थी। हाँ जी तो बात तो सही है, शैतान हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि हमारे नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक वो वसवसे डालता है तो हमें पसंद होता है, लिहाजा हम उसकी बात मान लेते हैं। तो बुनियादी शर्त तो हमारे नफ्स की तरफ से हुआ ना, इसलिए वो कहते हैं ला तलुमुनी लूम अनफुसकुम, मुझे मलामत ना करो अपने नफ्सों को मलामत करो। वो बुढ़िया वाली मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ ना कि वो गिर गई ना सर्दी में, ठोकर लग गई परेशान, अब लोग उनके पास आए, कोई कहते हैं जी उसको कंबल ओढ़ा दो, कोई कहता है उसको टकोर कर दो, कोई कहता है अस्पताल पहुंचा दो, कोई कहता है क्या करो। एक वंचले ने कहा कि इसको गरम गरम हलवा खिलाओ, तो उसने आंखें खोल दी, कहते इस बच्चे की बात सुन लेना। ये बात समझ में आ गई ना। इसी तरह हमारा नफ्स है कि जिस वक्त शैतान वसवसा डालते हैं उसके मुताबिक, मसलन सूद सारे लोग खाते हैं ये तो वैसे ही कहते हैं, ये जो तनख्वाही लेते हैं ये सूदी निज़ाम से नहीं आ रहे, तो तू कौन सा तीसमार खाना आ गया, हम खासू नहीं लेता। देखो ना बाकी लोग पल पूल रहे हैं, उनका ये हो रहा है वो हो रहा है, तो तुम सूद को छोड़ के क्या करोगे, उस निज़ाम को तो ख़त्म नहीं कर सकते हो। देखो वसवसा है, वसवसा शैतानी। अब दिल में मेरे नफ्स में मेरे ख्वाहिश तो है कि मैं मालदार हो जाऊं, अब सूद के जो पैसे आ रहे हैं वो मैं इस्तेमाल करूं, मुझे मिल जाएं, अब ख्वाहिश तो है। तो देखो लॉजिक कहां से आई, शैतान की तरफ से आई। लेकिन तलब कहां है, मेरे नफ्स के अंदर है, लिहाजा मेरे नफ्स कहता है हाँ वाकई। कभी कहता है अब ये गुनाह कर लेना, बाद में तौबा का दरवाजा तो खुला होता है ना मौत तक, बाद में तौबा कर लेना। अब ये वसवसा है, अगर उस पर वो अमल नहीं करता तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता, वो शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन नफ्स वो तो चाहता है, उसको तो कहीं ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए, वो तो चाहता है, वो उसको ज़बरदस्त ग्रीन सिग्नल मिल गया, बाद में तौबा कर लेना, बस शिकार हो गया, शिकार हो गया और ख्वार हो गया। बाद में जब कर लेता है तो शैतान की स्ट्रेटजी ये है कि शैतान पहले तौबा की उम्मीद पे गुनाह कराता है, वो जब गुनाह कर लेता है फिर कहते ओह तूने इतना बड़ा गुनाह किया अब तो तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा, फिर मायूस करता है वो। मसलन देखो ना, एक शख्स ने नमाजें गलत तरीके से पढ़ी हैं, किसी ने उसको मसला समझा दिया कि भाई नमाज तो इस तरह नहीं होता, कहते मेरे इतनी सारी नमाजें फिर क्या होगा, हाँ जी नहीं ये बात गलत है। अब देखिए भाई क्या होगा वाली बात तो सही है, मिसाल के तौर पर आपकी 2000 नमाजें गलत हैं और आगे आपने 5000 नमाजें और पढ़नी है तो आपके 5000 तो ठीक हो जाएगी ना। तो वो कहते हैं 2000 नमाजों का क्या होगा, तो 5000 भी उसी तरह होने दो। अब सोच तो हमाकत का है, लेकिन क्या शैतान आपको वो बनाएगा, होशियार बनाएगा, वही तो बेवकूफ बनाएगा ना, तो बेवकूफ तो बन ही गए हो। तो इस तरह होता है। तो ये असल में मतलब गोया कि, और ये बाजार बिल्कुल छोटी छोटी बेवकूफियां होती है, लेकिन ये छोटी छोटी बेवकूफियां मिलकर काफी बड़ा बेवकूफ आदमी बन जाता है। हाँ ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक, इस्तलाहात नक्शबंदिया, नक्शबंदिया जरात जैसे मैंने कहा नक्शबंदी तरीक़ाकार, ये बिल्कुल एक डिफरेंट तरीका है बाकी निज़ामों से, ज़रा मुख्तलिफ है। लिहाजा इनने बिलखसूस जो कोशिश की है जज्ब कस्बी पर, वो किसी और जगह पर ऐसा नहीं है। तो इस लिहाज से इनकी फिर अपनी इस्तलाहात है, एक अपनी दुनिया है, उस दुनिया के अंदर भी कदम रखना होता है ताकि समझ में आ जाए कि वो क्या सोचते हैं। हाँ जी, तो ये क्या है? चंद इस्तलाहात नक्शबंदी। राबिता शेख, नक्शबंदी तरीके के पुराने इस्लूब के तहत हर वक्त हर जगह कल में तसव्वुर शेख के जरिए शेख तरीकत से अपना राबिता कायम रखना, ये राबिता शेख कहलाता है, इसको तसव्वुर शेख भी कहते हैं। लेकिन इस तसव्वुर शेख की इस रुख को एक नक्शबंदी शेख ही ने ख़त्म किया है आजकल के दौर के लिहाज से, और वो है सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने चूंकि मुजद्दिद थे तो अपने शेख ने उनको राबित मतलब जो तसव्वुर शेख तालीम किया, तो उन्हें कहा हजरत ये कोई लाजमी चीज़ है तसव्वुफ के लिहाज से, अगर लाजमी चीज़ है तो फिर तो मैं तसव्वुफ को सलाम कर लूँगा क्योंकि मुझे तो शिर्क नज़र आता है, और अगर लाजमी चीज़ नहीं है तो मैं फिर से मुझे उससे माजूर समझा जाए। तो हज़रत ने उनको गले से लगाया, फरमाया माशाल्लाह आपकी नस्बत से सलूक की नबूवत से है, लिहाजा मैं आपको उस तरीके से चला दूंगा जिसमें तसव्वुर शेख नहीं है। तो गए कि पहली दफ़ा इससे जिसको कहते हैं रुकने वाला जो था वो भी एक नक्शबंदी शेख ही था। इस वजह से हमारे यहाँ तसव्वुर शेख इस तरह नहीं है कि जो बाकायदा तसव्वुर किया जाता है, हमारे यहाँ तसव्वुर किया नहीं जाता, हो सकता है लेकिन हो जाता है, किया नहीं जाता, मसला किया जाता में है, हो जाना में नहीं है। बस आपको शेख हर वक्त याद रहे तो क्या उसको भुलाने की कोशिश करोगे? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। फिर तो आप सर ही होकर झटक रहे होंगे, तुम्हारा काम क्या होगा? सिर्फ सर ही झटक रहे होंगे ना, तो इसकी पाबंदी नहीं तुम्हारे ऊपर, खुद ब खुद आ गया तो कोई परवाह नहीं, लेकिन लाना नहीं है, यानी इसके बाकायदे बारे में सोचना बिल्कुल नहीं कि मुझे शेख वह के नजर आ रहे हैं या मेरे क्या है। तो ये मतलब ज़ाहिर तसव्वुर शेख। तो आजकल तसव्वुर शेख का जो मुस्बित रुख है वो इस तरह होता है, क्योंकि कहते हैं कि जब वसवसे हो क्या बरमार हो तो उस वक़्त इलाज की दिल के लिए तसव्वुर शेख किया जाता था। तो तसव्वुर शेख में चूंकि एक सुई आती थी तो वसवसों से बचत हो जाती थी, तो वह तसव्वुर शेख में आदमी पनाह लेता था। आई अब चूंकि तसव्वुर शेख खुद अपने सोच से करना ठीक नहीं है, मतलब आजकल के हालात में, क्यों आजकल के हालात में क्यों कि आजकल तसव्वुर शेख की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें भी होने लगती है जो इंसान के समझ में नहीं आती, तो फिर आदमी मतलब शेख को आज़र नाज़र समझ लेते हैं, तो लिहाजा उससे नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से अपने अकीदे की हिफाज़त के लिए अपने तरीके को थोड़ा तब्दील करना पड़ा ताकि अकीदा ख़राब ना हो, तो ये इस वजह से हुआ। तो अब ये कि अब आपको एक फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा भी हासिल करना चाहते हैं और नुकसान से भी बचना चाहते हैं, तो फिर क्या है, तो बुज़ुर्गों ने इसका तरीक़ा निकाला कि शेख के लिए दुआएं करो। अब आप शेख के लिए दुआ करते हैं तो शेख आपको याद आएगा या नहीं आएगा, और दुआ करेंगे तो क्या आप शेख से मांगेंगे, मांगना तो अल्लाह से है ना, तो तौहीद भी आ गया, तसव्वुर शेख भी आ गया, उसका फ़ायदा भी हो गया और नुकसान भी नहीं हुआ। कितना खूबसूरत तरीका, अपने शेख के लिए दुआएं शुरू कर लो, तो दुआओं में तो अल्लाह ताला की तरफ ही इंसान मुतवज्जो होता है ना, तो ज़ाहिर उसमें तो हिफाजत हो गई, तो ईद की तरफ बात चली गई, तो लिहाजा ये बड़े मुफीद चीज़ है। होश दर दम, ये असल में पास अनफास ही है कि साले का हर सांस हुजूर व आगाही, यानी हर दम होश में हो ताकि कोई सांस गफलत व मासीत में ना गुजरे। दो चीज़ों का इदराक फौरी तौर पर हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह मेरे मालिक है। जब मुझे ये बात याद रहेगी तो मैं गाफिल नहीं हूँ, जब ये बात मैं भूल जाऊँगा तो मैं गाफिल हूँ, और गफलत में कुछ भी कर सकता हूँ, गफलत में कुछ भी कर सकता हूँ। लिहाजा इस चीज़ को किसी भी तरह याद रखना ये होश दर्दम है, चाहे आपको किसी भी तरीके से याद हो जाए, हर एक के लिए अपने अपने तरीका हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर आपको याद, तो ये होश दर्दम है। यानी क्या है, हर वक्त सांस की हिफाजत करे ताकि राबेदा टूटना न पाए और वाबस्त गिरे। हदीस शरीफ में है कि होशियार वो शख्स है जिसने अपने नफ्स को डराया। हज़रत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि किसी सांस को ज़ाया ना होने दे, यानी सांस के दुखूर खुरूज और खुरूज दुखूर के दरमियान मुहाफ़ज़त दरकार है कि कोई सांस गफलत में ना गुजरे। अगर गफलत महसूस करे तो इस्तग़फ़ार करे, आइंदा गफलत तर्क करने का इरादा करे, क्योंकि इसी गफलत के सबब इंसान मासी का मरतकब होता है। होश दर्दम तफरक़ा अंदरूनी के लिए, तफरक़ा कहते हैं जुदाई, यानी अल्लाह पाक से जुदाई, वो अंदरून में यानी आफाक में नहीं मतलब अनफुस में, तो इसको दूर करने के लिए क्या है, होश दर्दम है। तो हजरत ख्वाजा अजीज हसन मरजूब रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती हैं, ख्वाजा अजीज हसन मरजूब रहमतुल्लाह अलैह तानवी मजहब के खलीफा है, चिश्ती हैं। वो क्या कर रहे थे, लोगों को हंसा रहे थे, लतीफों पर लतीफे सुना रहे थे, रास्ते पे जा रहे थे ना, तो जब अपनी मंजिल पे पहुंच गए तो लोगों से कहा भाई तुम में से कोई गाफिल तो नहीं हुआ था, तो कईयों ने कहा हजरत हम तो गाफिल हो गए थे, फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं हुआ। अब देखे सबको हंसा रहे लेकिन गाफिल नहीं है, सबको हंसा रहे लेकिन गाफिल नहीं है, ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। और जिनकी इस्तेलाह है नक्शबंदी हजरात का, आजकल किसी नक्शबंदी से पूछो कि क्या तेरे हर सांस अल्लाह की याद से गुजरती है, क्या ख्याल है हजरत, सुख बजवाब रहा की आज ये क्या तेरे हर सांस जो है ना मतलब अल्लाह की याद के साथ चल रही है, तो फिर कोई जवाब देगा मुझे। हाँ जी, तो कहने को बातें तो बहुत है लेकिन अमल में आने की वो मसाइल होते हैं, यानी उसको अमली बनाने के लिए। हाँ जी, नज़र बर कदम, یہ نظر کی حفاظت کرنا، اس کے لیے اپنی نگاہ اپنے پاؤں کی طرف رکھنا، کیونکہ نیچے نظر رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دل کی بھی حفاظت ہے، کیونکہ نظر دل کا دروازہ ہے، خلط جگہ نظر پڑنے سے دل متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا عمومی تعریف ہے، خصوصی تعریف ایک مکتوب شریف میں ہے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو لوگوں کی سمجھ میں اتنا آسانی سے نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا یہاں نہیں دیا۔ یاد ہے آپ کو نظر بر قدم کا؟ ہاں جی، وہ ان حضرت کا وہ لیتے، اب میں آپ کو بتا تو دوں گا لیکن آپ کہیں گے کیا یہ کیسے؟ یعنی ہر شخص، ہر صوفی، ہر سالک جو ہوتا ہے وہ کسی کے قدم پر ہوتا ہے، یعنی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے کہ اس قدم پر نظر رکھو، نظر پر قدم، کہ تم کس کے نقش، تم کس کے قدم پر ہو، اس کو دیکھو اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالو، نظر بر قدم، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ظاہر ہے وہ تو ان کی پرواز، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، شاہی کا جہاں اور ہے گرگس کا جہاں اور، مطلب ظاہر ہے مطلب یہ کہ ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے۔ سفر در وطن، سفر در وطن کے معنی اپنے باطن میں سفر کرنا، اس کو سیر انفسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ انسان اپنے بشری صفات سے ملکی صفات کی طرف بتدریج لوٹے، اور روح جو بشریت کے جامع میں آ کر صفات زمیمہ کا شکار ہو گئی ہے، اس کو صفات حمیدہ سے ہمکنار کرتا رہے، یعنی اپنے نفس کے اوپر محنت کرتا رہے۔ اگر نقشبندی حضرات ناراض نہ ہو جائے تو، ہاں جی، بھلے اپنی نفس کی اصلاح کرتے رہے، کیونکہ نفس ہی گندہ کرتے ہیں نا دل کو، تو جتنے جتنے نفس کی اصلاح ہوتی جائے گی تو اتنا اتنا وہ ظاہر پاک ہوتا جائے گا۔ یعنی تلے بھیجا، بغض، حسد، کینہ وغیرہ کو دل سے نکال کر بار بار اپنے دل کو ان سے بالکل پاک کر کے صفات حمیدہ کی طرف انتقال کرنا ہے۔ یہی وہ جگہ جو مجازی بھی متمکن کے سمجھنے کی ہے، یہی وہ جگہ جو مجازی معلوم ہونا چاہیے کہ روح نفس کی وجہ سے صفات زمینہ کا شکار ہو گئی ہے، یعنی پس نفس کا دور جب تک جاری ہے گا تو صفات زمینہ سے خلاصی کیسے ہوگی؟ جذب کی وجہ سے مقام قلب میں اگر کوئی آ جائے تو اس کو اپنے محبوب اصلی کا پسندی طریقہ نظر تو آئے گا، لیکن اس محبوبی اصلی کے عرفی وصال میں الہی زمینہ کا جو پہاڑ خیال ہے، اس کو سر کیے بغیر کامیابی کیسے ممکن ہے؟ اس لیے حضرت مجدد صاحب نے سلوک کے 10 مقامات طے کرنا بتایا ہے، صرف قلبی اسباق سے ایسا حاصل کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ صرف قلبی اسباق کے ذریعے سے اس کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نفس درمیان میں حائل ہے، جب تک نفس کا پہاڑ تو نے طے نہیں کیا، مطلب اس کو سر نہیں کیا، اس وقت تک تم صرف اور صرف تخیلات کی دنیا میں ہی رہ سکتے ہو۔ آپ کے مراقبہ سارے کے سارے تخیلات ہوں گے، وہ واقعی مراقبات نہیں ہوں گے۔ ہاں جی، واقعی مراقبات نہیں ہوں گے، تخیلات کی دنیا میں ہو تو اپنے، اگر جس کو کہتے ہیں نا دنیا میں آنا ہے اور دنیا میں ہی اللہ کا بننا ہے، تو اس کے لیے پھر اپنے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے کام نہیں ہو سکتا۔ خلوت در انجمن، خلوت در انجمن کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت دل سے خدا کے ساتھ مشغول رہے، چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو، اور اپنے تمام روزمرہ کے مشاغل، مثلا عقل و شرب، نشست و برخاست، معاملات، فام و ادراک وغیرہ پر اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھے۔ حضرت خواجگان حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ کے نزدیک خلوت در انجمن ظاہر میں خلق کے ساتھ اور باطن میں حق کے ساتھ ہونا ہے۔ ظاہر میں خلق کے ساتھ اس لیے ہونے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرے، اور باطن میں حق کے ساتھ اس لیے ہونے کہ بغیر اس کے حقوق کی ادائیگی ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ اگر آپ اللہ پاک کو نہیں اس سلسلے میں یاد رکھتے، ان کے ساتھ نہیں ہے، پھر نفس ہی ہوگا، تو کیا نفس آپ کو اس کا حق ادا کرنے دے گا؟ نفس تو ہڑپ کرنے والا ہے، غصب کرنے والا ہے، وہ دینے والا تھوڑا ہے۔ ہاں جی، تو لہٰذا آپ نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، اللہ جل شانہ کے ساتھ ہر وقت ہونے کا ادراک حاصل کرنا ہے، اور مخلوق کے درمیان رہ کر ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ अब चूंकि उस वक्त इस्तेदाद थी लोगों में बराह रास्त बात समझने की, लिहाजा हजरत ने सिर्फ दो बातें बताई, लेकिन अब चूंकि इदराक कम है, इस्तेदाद कम है, लिहाजा अब तीसरी बात बतानी भी जरूरी है, और वो क्या है कि नफ्स को काबू रखें, क्योंकि नफ्स ही तो मुसीबत डालता है ना, वही तो शर्त डालता है, वही तो आपसे अल्लाह ताला का हुक्म तोड़वाता है, वही तो अल्लाह ताला वही तो मखलूक के हुकूक गसब करवाता है नफ्स। तो नफ्स को जब तक काबू नहीं करोगे उस वक्त तक आप ये काम कैसे कर सकते हैं। ये वाली बात। अपने कुत्ता पालना यूरोप में मुस्तहसन है, लोग पालते हैं, कानून वहाँ है कि कुत्ते ने अगर किसी का नुकसान किया तो कुत्ते वाले पे जाएगा। क्यों कानून ये नहीं है उधर? उस कुत्ते को काबू करना उसकी जिम्मेदारी है, उन्हें कह सकते बस मेरे कुत्ते ने किया, वो तो बेजुबान जानवर है, मैं क्या करूं। वो कहते तू यही करता, तू इसको पट्टा क्यों नहीं डाला, उसको काबू क्यों नहीं रखा, नहीं काबू करोगे नुकसान तो मारा होगा, तुझसे बदला लिया जाएगा। हाँ जी, एक कसाब था, कसाब तो कोई शख्स आया, नहीं वो कुत्ता वकील के साथ कुत्ता था, तो उस वकील के कुत्ते ने मतलब जो है ना वो जिसको कहते हैं ना गोश्त उससे ले लिया, यानी वो छीन लिया। तो कसाब उससे कहे, उसको पता है कि वकील है, उसने कहा कि अगर किसी का कुत्ता किसी का नुकसान कर ले तो उस नुकसान का बदला कौन देगा। उसने कहा जिसका कुत्ता है। उन्होंने कहा आपने मेरा इतना नुकसान किया तो इसका दे दो बदला। उसने कहा इसके कितने पैसे हैं। उसने कहा मसलन 200 रुपये। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, मेरे मशवरे की फीस 500 रुपये है, 300 रुपये मुझे दे दो। सही, ये तो खैर लतीफा नुमा बात थी। आज बात यह कि जब कुत्ता किसी का नुकसान करेगा तो वो उसकी जिम्मेदारी है, तो इस तरह नफ्स भी हमारे कुत्ते की तरह है, ये भी इधर उधर मुंह मारता है, कभी किसका नुकसान किया, कभी किस आंख से नुकसान किया, कभी कान से नुकसान किया, कभी जुबान से नुकसान किया, कभी दिमाग से नुकसान किया, कभी क्या किया, कभी क्या किया, जिम्मेदार कौन होगा? कुत्ते वाला, ये नफ्स वाला, ठीक है ना, नफ्स वाला। तो अब ये जो है ना, मतलब ये है कि अब जब तक आपका कुत्ता काबू में ही नहीं है तो आपके नुकसान के दरवाजे खुले हुए हैं। तो इस वजह से कुत्ते को का मतलब नफ्स नफ्स को काबू में करना होगा, ताकि आप अपने आप को इसके नुकसान की जिम्मेदारी से बचा सकें। हाँ जी, ये वाली बात। याद कर जिक्र और ज्ञान के माने, हम माने ज्ञान ध्यान जिसको कहते हैं, मुराद ये कि अपने शेख से सीखे हुए जिक्र बर वक्त अदा करना है। जिक्र उस कसरत से करे कि अल्लाह जल्ल शानु की हुजूरी का मुकाम हासिल हो जाए। ये ज्ञान ध्यान जो है ना, ये दूसरे लोगों में भी है, उनका अपना है, हमारा अपना है, लेकिन मतलब एक ही है। हाँ जी, यानी हम लोग अपने रब को याद करते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं, वो अपने भगवान को याद करते हैं। हाँ जी, लेकिन बहरहाल दोनों को ज्ञान दयान ही कहते हैं। ज्ञान बाज गश्त, यानी रुजू करना या फिरना, इससे मुराद है कि थोड़े थोड़े जिक्र के बाद 3 बार या 5 बार मुनाजात की तरफ रुजू करे। हज़रत शाह नक्शबंद कुदसुरु की दुआ थी, इलाही मकसूद मन तुई व रज़ाए तू, मोहब्बत व मगफ़रत खुद बेदे। ए अल्लाह मेरा मकसूद तू ही, और अपने खुशदूदी अपने मोहब्बत और मगफ़रत अता फरमा। हज़रत नक्शबंद जो कुछ सुन देखा सुना जाए और जाना जाए वो सब गैर खुदा है, कलमा तैयबा के ला से सबकी नफ़ी करनी चाहिए। एक बात याद रखना चाहिए वो ये है कि ये उलूम फारसी से उर्दू में मुंतकिल हुए हैं, फारसी से उर्दू में मुंतकिल हुए हैं। अगर किसी ने इतनी मेहनत इस पर कर ली कि उसके लिए फारसी ये मादरी जुबान की तरह हो जाए, तो इस तरह करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर उसके लिए फारसी ऐसा रुख अख्तियार नहीं कर सकी और वो सिर्फ अल्फाज ही अल्फाज रह गए, असल माने का इदराक ही खत्म हो जाए, तो फिर अपनी जुबान में बोलना जरूरी है। समझ में आई ना बात? अपनी जुबान में ख्याल, क्यों? आपके शऊर के साथ आपकी जुबान का जो ताल्लुक है वो लायो है। हाँ जी, लिहाजा जो बात आप अपनी जुबान में सोच रहे हो आपके शऊर में बराह रास्त पहुंच रही है, वो जो आप किसी और की जुबान में बोल रहे हो तो पहले उसका तर्जुमा होगा फिर बाद में पहुंचेगा। हाँ जी, पहले तर्जुमा होगा फिर बाद में पहुंचेगा। तो तर्जुमे में कितनी सेहत होगी, वो तर्जुमे में कितनी देर होगी, वो तर्जुमा कितना कामिल होगा, इसमें बड़े मसाइल है। नतीजतन आप सिर्फ अल्फाज तक ही रहेंगे और उससे वो एहसास का इदराक, एहसास व इदराक हासिल नहीं कर सकेंगे जो शऊर में आना ज़रूरी है। नतीजतन सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई रह जाएगी, एक रस्मी कार्रवाई रह जाएगी। तो इस वजह से ये जो अल्फाज मुबारक है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आया आपके ऊपर उसका असर वैसे ही पड़ रहा है जिस तरह उनके लिए पड़ रहा था, या कुछ फ़र्क आ गया है? और अगर आपकी अपनी ज़ुबान में हो जाए फिर फ़र्क ऐसे ही होगा या उससे बढ़ जाएगा? तो अगर बढ़ता है तो क्यों नहीं करते उस तरह? हाँ जी, मतलब ये है कि इंसान इंसान जो है ये अपनी ज़ुबान में अल्लाह जल्ल शानू से दुआ जब करता है वो दुआ शऊर के ज़्यादा करीब होती है और उसका दिल उसके साथ होता है, और अगर दूसरी ज़ुबान में करते हैं तो उसका दिमाग उसके साथ होता है। मतलब ये कि उसको उस तरफ ही, क्योंकि बार बार जब तर्जुमा करते हैं तो दिमाग की तरफ आएगा ना वापस, तो उसका दिमाग उसकी तरफ होगा। तो इस वजह से अगर मैं इसका तर्जुमा करूँ तो मैं कहूँगा पश्तो में कहूँगा, ज़ाहिर मेरी ज़बान पश्तो है। हाँ, अलबत्ता आप लोग अपने उर्दू ज़बान में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। हाँ जी, ए अल्लाह तज़म्मा मकसूदी खपल मोहब्बत माता नसीब की, पश्तो वाले समझ गए? ए अल्लाह तज़म्मा मकसूदी खपल मोहब्बत रहता नसीब की, बस आसान बात है। अब इसके लिए मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? जितने लोगों ने इसका तर्जुमा नहीं किया, मतलब जितने लोगों ने इसको फारसी में पढ़ा है उनसे पूछे कि क्या उनको ये चीज़ हासिल हो गई है जो जो एक दफ़ा पश्तो में पढ़ने से हासिल हुई है? हासिल हुई है? तो उर्दू में आपके ए अल्लाह तू मेरा मकसूद है, तू ही अपने अपने मोहब्बत मगफरत मुझे नसीब फरमा दे, तो आप अपने ज़ुबान में इसको बोल सकते हैं, अपने पंजाबी में कह सकते हो। हाँ जी, सराइकी में कह सकते हो, वो जो भी मतलब आपकी जुबान है उसके हिसाब से कहो, तो फिर आपको इसका सही मतलब वो मिलेगा। क्यों? देखो, तसव्वुफ और सलूक के अंदर अवामियत पाई जाती है, यानी अवामी लेवल तक आना होता है। इसमें इल्मियत नहीं पाई जाती, अमलियत पाई जाती है। इसमें इल्मी मकसूद, इल्म मकसूद नहीं है, अमल मकसूद है। तो लिहाजा आपका जितना इल्म मतलब जितना अमल मतलब इसके मतलब इससे बनता है उसको देखना चाहिए कि वो नतीजा किस से आ रहा है। मैं कभी कभी एक दुआ करता था उसका तो मुझे पता भी नहीं कब से मैंने शुरू किया है, वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन मैं एक दिन बैठा हुआ था और वो दुआ मेरी ज़ुबान से निकली। तो सईदुल अशा से अब यही जहांगीर रखे के हैं, मुफ्ती हैं पेशावर में, लेकिन ये तूने क्या कहा? तो मुझे भी ख्याल आ गया कि मैंने कुछ कहा है, तो मैंने वो बता दिया। मैंने कहा ये तो अजीब दुआ है। वो दुआ क्या था? या अल्लाह मुफ्त की राजिशी, पश्तो में या अल्लाह मुफ्त की राजिश, मुफ्त में राजी हो जा। कहते तो बड़ी अजीब दुआ है। मैंने कहा जैसे भी है लेकिन जबान पे जा रही है। हाँ जी, मतलब मैं काम काबिल किसी चीज़ का भी नहीं हूँ लेकिन तू फजल फरमा दे, करम फरमा दे। हाँ जी, तो अब ये दुआ ऐसी है कि मुझे बाज़ दफ़ा पता भी नहीं चलता कि मैं वो ज़बान पर जारी रहता है, मतलब वो जो है ना वो ये। इस तरह कई दुआएं, कई दुआएं ऐसी है जिसका मुझे ओरिजिन का पता नहीं कि कहाँ से शुरू हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चलती है। जिनमें एक दुआ ये है कि पश्तो में जब मांग तो अलहदा बात है, लेकिन उर्दू में आपके सामने, या अल्लाह हिदायत नसीब फरमा, हिदायत का जरिया बना दे, हिदायत नसीब फरमा, हिदायत का जरिया बना दे। बहुत जामे दुआ है, मतलब यह है कि हिदायत मुझे भी नसीब हो जाए और फिर दूसरे लोगों के लिए भी मैं जरिया बन जाऊँ। तो वाकई अल्लाह ताला अगर इसको कबूल फरमा दे तो क्या हो, माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से फिर मदद होगी। तो ये जो दुआएं हैं कल्बी दुआएं, ये बड़ी काम की होती हैं। तो ये बाजगश में ये चीज़ आती हैं, बाजगश में ये दुआएं आती हैं। निगहदाश्त, इससे मुराद है कि जाकिर अपने कल्ब के बारे में खबर रखे, अपनी निगाह अपने दिल पर लगाए रखे कि बन रहा है या बिगड़ रहा है, बन रहा है या बिगड़ रहा है। ये बहुत बड़ा बड़ी बड़ा इलम है कि दिल के ऊपर निगाह आपकी हो कि बढ़ रहा है या बिगड़ रहा है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब ने क्या किया था, वो जो उनके इत्तला मिल गई ना कि आपका जहाज डूब गया, तो इनने फौरन मुराकबा किया और सर उठाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ देर के बाद कोई और साहब कहे नहीं हजरत वो आपका जहाज नहीं, वो आपका जहाज तो महफूज आ रहा है। तो फिर उन्हें मुराकबा किया, सर उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोगों ने कहा हजरत ये क्या बात हुई, दो खबरें मुख्तलिफ हैं, अपोजिट हैं, आपने दोनों पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा, क्यों कहा? फरमाया आप क्या समझते हैं मैंने किस चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा है? ने कहा जहाज के डूबने पर, जहाज के न डूबने पर। मैं नहीं, मैंने इस पर नहीं कहा, मैंने दिल की हालत पर कहा, मैंने दिल की हालत की तरफ तवज्जो की, क्या इस खबर से दिल मुतासर हुआ है इस नुकसान से? तो मैंने देखा कि नहीं, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने इस पर जो है ना वो तवज्जो की कि जो उस वक्त वो आया खबर आई कि नहीं डूबा, मैंने फिर सोचा कि क्या इससे दिल मुतासर हुआ है? तो मैंने कहा कि नहीं हुआ है सर। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब निगहदाश्त का उसूल कहाँ से साबित हुआ? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुझसे साबित हुआ ना, उनकी ज़िंदगी में हुआ है ना। हाँ जी, पता चला कि निगहदाश्त इतना ज़बरदस्त निगहदाश्त था उनका, अपने दिल के ऊपर नज़र कि मेरा दिल बन रहा है या बिगड़ रहा है, क्या क्या असर ले रहा है। हजरत शाहबुद्दीन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि खतरा को एक साथ भी दिल में नहीं रखना चाहिए। बुजुर्गों के नज़दीक ये एक लफ सफा हो गया, और जो वसाए उस ख्यालात गैर खुदा के दिल में आए उनका इब्तदाई से तदारुक करे, यानी उनको पनपने न दे, बढ़ने न दे। जैसे चिंगारी होती है तो चिंगारी को फौरन ही मारना होता है, और अगर चिंगारी आप मार ना सके तो फिर बहुत बड़ा मसला होगा, फिर पूरे आग को बुझाना होगा। हाँ जी, तो उसके वसाइल आपके पास या होंगे या नहीं होंगे। वो कहते हैं कि किसी साहब ने कहा, ये भी एक लतीफ़ा है, कि साहब ने कहा कि ज़रा अलकाब व आदाब का ख्याल रखना चाहिए बातों में, इससे ज़रा बातों का हुसन होता है। ठीक है जी। अब उस्ताद जी के जिसने समझाया था, पगड़ी में चिंगारी आई, उसने कहा हमारे उस्ताद मोहतरम उलुलाजम ये वो ये वो ये वो पूरा पैराग्राफ, आखिर में कि पगड़ी में, पगड़ी मुबारक में चिंगारी का दखूल हो गया है। उस वक़्त साहब आग उसने पकड़ ली थी, काम ख़राब हो चुका था। हाँ जी, तो ये उस उसूल के ख़िलाफ़ है। जैसे ही कोई वो मसला ऐसा आ जाए, वसवस आ जाए, फौरन ख़त्म, ज़रा बर भी उसको जो है ना वो रहने ना दो, उसी वक्त किल कर दो। हाँ जी, ख्यालात आते हैं ना, ख्यालात को का रुख फौरन फेर दिया करो अपने किसी मुबाह सोच की तरफ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना, हर एक अपना अपना सोच होता है जिससे वो बचता है। मेरे लिए मैथमेटिक्स हुआ करता था, रियाजी। अब रियाजी में पना लेता था, किसी इक्वेशन में घुस जाता था, फिर वस्तु से को पता नहीं होता कि मैं किधर हूँ। हाँ जी, तो हर एक अपना अपना तरीका होगा, बाजार कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा होगा। हाँ जी, लेकिन हो मुबाह, नाजायज ना हो, नाजायज ना हो। हज़रत शाह अब्दुल मुहद्दिस ज़ेहलवी फरमाते हैं कि खतरा को एक साथ भी दिल में नहीं रखना चाहिए, बुजुर्गों के नज़दीक ये बहुत अहम है। औलिया कामिलीन को दौलत तवील अरसे तक हासिल रहती है। याददाश्त, ये फिक्र और ध्यान क्या माने है? इससे मुराद माशाल्लाह, ये फिक्र और ध्यान क्या माने, और इससे मुराद दवाम आगाही बहक सुभान उताला है। यानी गहदाश जिसमें तालिब इल्म अपनी कोशिश से अल्लाह ताला की तरफ मशगूल रहता है, उसका नतीजा और अगला मरहला है जिसमें साले खुद बहुत अल्लाह ताला की तरफ मशगूल मुखातिब होता है, और ये मुकाम मुंतही को फना बका के बाद हासिल होता है। इसके बाद चाहे जैसी भी हालत से मुतासर होकर साले अपने महबूब या की से गाफिल नहीं होता। यानी दिल में एक ऐसी चीज़ हो जो मुसलसल खुद ही अपने आप को याद रखवाता है, याददाश्त, एक निगहदाश्त है, उसमें फाइलियत है, आप निगहबानी कर रहे हैं, मतलब जनाब उस पर निगाह डाल रहे हैं। याददाश्त वो खुद ब खुद मुझे याद है, उसको आप बुला नहीं सकते। जैसे कोई गम किसी को लग जाए, अब वो उसको बुलाने के लिए ट्रंकुलाइजर करता है, इधर उधर करते हैं, लेकिन गलत नहीं होता, वो मुसलसल वो गम फिर भी याद आता है। हाँ जी, तो याददाश्त के ज़ुमरे में है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे, यानी मेरा दिल किसी गलत चीज़ की तरफ मायल ना हो और उसके ऊपर आप नज़र रखें, तो उन्हें गहदाश के ज़ुमरे में आएगा। वकूफ़ी ज़मानी, ये नफ्स के मुहासबे के लिए है कि देखा जाए किस तरफ जा रहा है, ताकि अगर गलत समझ में जा रहा हो तो उसको दुरुस्त करने की तदबीर फिलफोर की जाए। आमतौर पर यह मुतवसित के लिए होता है, दरमियानी शख्स के लिए होता है। वकूफ़ी अददी, वकूफ़ी अददी से मुराद सालिक का इसनाए जिक्र इस बात का अहतमाम करना कि ताक अदद पर करे न कि जुफ पर, क्योंकि इन्नल्लाह वित्र युहिब्बुल वित्र, मतलब ये कि सुन्नत का इदराक हर वक्त हो, कि आप हर चीज़ में सुन्नत का ख्याल रखें तो आदात में भी इसका ख्याल रखें। देखें ना, हम सुभान रब्बिल अज़ीम कितनी मरतबा पढ़ते हैं, हाँ जी 3 मरतबा, लेकिन ये कम से कम है, और 5, 7, 9, 11, लेकिन ये जुमात की नमाज में नहीं, इमाम के लिए नहीं है, ये मुक्तदी के लिए। एक दफ़ा मैं इतलाल कमेटी के इजलास में जा रहा था, मगरब के बाद मैं वो इतकाफ से बाहर आ गया, तो स्पीड पे जा रहा था कि कहीं मस्जिद मिल जाए नमाज पढ़ूँ, तो ये मस्जिद पर जो है ना, वो मैं जा रहा था, मसला क्या हुआ, एक मस्जिद मिल गई, लेकिन वो साहब थे जो 17 मरतबा 19 मरतबा सुभान रब्बिल आला कहने वाला था। मैंने कहा या अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा दे। ये नहीं देखो ना किसी, और मुझे तो उसका एहसास था ना कि मैंने कहाँ जाना था, तो मुझे तो पता उस वक्त लगा, पता नहीं कितने लोगों का काम होगा कोई, तो आपको इस बुजुर्ग की सारी अपने जुमात की नमाज में याद आती है। इस पर बाकायदा आपसे सम की नफी मौजूद है। वो एक दफ़ा एक सहाबी रसूल से सब ने नमाज पढ़ाई, तो उसमें सूरह बकरा की तिलावत की इशा की नमाज में, तो एक अलमा हज़रत महाज रहते थे, तो एक सहाबी अपनी नियत तोड़ के अपनी नमाज पढ़ के चले गए, वो मजदूर थे। दूसरे साहबा ने उनकी शिकायत की, यार रसूल ये तो इस तरह नमाज तोड़ के चले गए थे। आपसे सब ने को बुलाया, क्यों इस तरह किया? उन्होंने कहा यार रसूल मैं मजदूर आदमी हूँ, थका हुआ था, और सूरह बकर ने शुरू की, मैं कैसे सुन सकता था, तो मैंने इस वजह से फिर अपनी नमाज पढ़ ली। तो आप सब ने माज रतलानों को कहा, ए माज तू क्या फितना बनना चाहता है, फितना बनना चाहता है, मतलब यह है कि लोगों को आजार होते हैं, वो क्या होते हैं अल्फाज इस तरह थे कि साहिब जू हाजत, हाँ हाजत होती है उनको, कोई मतलब यह है कि वो जो हाजत होते हैं उनमें, तो आप मतलब यह मुख्तसर हो। तो बाजुमात नमाज मुख्तसर। मैं आजकल ऐसे इमामों को भी जानता हूँ जो अपने बाजुमात नमाज 4 रकात 13 मिनट में और अपनी नमाज 6 मिनट में, हालांकि ये उसका उलट है ना, उलट क्या होना, सही क्या होना चाहिए, बाजुमात 6 में पढ़ो, हाँ इनफरादी लंबी पढ़ो, तो मामला उलट है। इनफरादी मैंने उनका इनफरादी नमाज खुद चेक किया, कसदन चेक किया, मैं देखता हूँ कि इनफरादी नमाज की कितनी लंबी है, ताकि पता चल जाए कि वो कौन से कैटेगरी में, तो पता चला कि इनफरादी नमाज उसके हाफ और जमात का नमाज। फिर इसके अगर अपना इज्तिहाद ये है कि बूढ़े होते हैं वो जल्दी जल्दी उठ नहीं सकते, मैं इनके लिए देर करता हूँ, तो आप सोचें बस हदीस शरीफ को याद कर लें कि उनने किस बात पर नाराजगी का इजहार किया था, लंबी पढ़ने पर या मुख्तसर पढ़ने पर। हाँ जी, तो पता चल जाएगा मतलब क्या है। अपनी तरफ से तो इंसान कुछ नहीं कर सकता ना, इसके लिए नज़ीर मौजूद है। तो आजकल बस मसाइल मसाइल है, मसाइल ही मसाइल। वकूफ़ कल्बी, इससे मुराद ये है कि सालिक हर वक्त हर लहजा अपने कल्ब की तरफ मुतवज्जे रहे और कल्ब खुदा की तरफ मुतवज्जे रहे। अपने कल्ब की तरफ मुतवज्जे और कल्ब खुदा की तरफ मुतवज्जे रहे, यानी कल्ब का रुख अल्लाह की तरफ होगा तो उसका जो अल्लाह जल्ला शानों का जो यानी जिल, जिसको हम कहते हैं ना, वो तजल्ली, वो उसके अंदर वो ये आईना बन जाएगा ना, साफ होगा, तो मेरी तवज्जो उस तरफ होगी। इसी को ज़ाते वक्त कहते हैं ना, यही तो ज़ाते वक्त का तसव्वुर है, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह पाक तो कोई नहीं दे मतलब वो देख सकता है, लेकिन ज़ाते वक्त से मुराद यही है कि दिल अल्लाह की तरफ हो और मेरा रुख मतलब दिल की तरफ हो, और वसाय उस खतरा दिल में दाखिल ना होने दें, खुसूसन जलसे जिक्र के दौरान उनका पूरा पूरा ख्याल रखें। यहाँ ज़िंदगी को पेश आने वाले मुख्तलिफ मराहल में खुदा के पसंदीदा और नापसंदीदा का काम का सवाल भी सामने आता है। कोई हर पेश आने वाले अमर में फैसला कि काम खुदा को पसंद ना पसंद है, इसलिए मुझे इसका तर्क करना ज़रूरी है। उसमें खुदा की पसंदीदा सूरत यह है जिस पर करबंद और मेरे लिए लाजमी है, बस इसी का नाम वकूफ़ी कल्बी होगा। वकूफ़ी कल्बी शाह नक्शबंद रहमत के नज़दीक बहुत ज़रूरी है और ये रुकन अजीम है। तरीक़ा सिलसिला नक्शबंदिया का दारोमदार इसी पर है। मतलब यह है कि हर वक्त आप अल्लाह की पसंदीदा सूरत जो जो मसला सूरत मसला है उसकी तरफ आपका दिल मुतवज्जो हो कि बेहतरीन अल्लाह के नज़दीक क्या है। तो गोया कि अमली दुनिया में आप आ गए। अगर वैसे आप देखें ना कि अल्लाह दिल अल्लाह की तरफ और मेरा रुख जो है ना दिल की तरफ, तो ये एक तशरीह काबिल तशरीह चीज़ है। लेकिन अगर आप उसके नतीजे पे देखें, गौर करें कि आपका दिल अगर अल्लाह की तरफ है तो क्या मतलब, तो उसका मतलब यह है कि जो अल्लाह पाक की मर्जी है आपका दिल वही चाहे, और फिर आपका दिल जो चाहे आप वो कर लें, तो मकसद हासिल हो गया ना। इस तफ्त कल्बक, उस पर भी अमल हो जाएगा ना। अपने दिल से पूछो क्यों आपका दिल अल्लाह की तरफ है, ये पहले उसकी ख्वाहिश अल्लाह का ख्वाहिश पसंदीदा चीज बना दो, जब वो दिल के बन जाए फिर अपने दिल की बात मानते रहो, देखो कि मेरा दिल क्या कहता है। इसके लिए आपको अपना दिल नफ्स से डिटेच करना पड़ेगा, क्योंकि मुफ्तदी का नफ्स, मुफ्तदी का दिल जो है ना वो उसके ऊपर नफ्स सवार होता है, लिहाजा वो कहते हैं मेरे दिल चाहता है, दिल नहीं चाहता, उसका नफ्स चाहता है, उसको रुख क्या देता है, मेरे दिल चाहता है, वो कहते भी इस तरह मेरा दिल है। दिल किधर है, दिल बेचारा तो मजलूम है, उसके ऊपर तो नफ्स बैठा हुआ है, हुंडा बदमाश उसे मतलब उसे हुंडगी करवाता है। हाँ, तो ये मतलब ये कि पहले अपने दिल को आज़ाद करो अपने नफ्स से, फिर अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जी करो, और उसमें अकल की सूरत ये है कि वो जानता हो मसाइल को कि इस वक्त अल्लाह पाक क्या चाहता है। तो देखो तीनों चीज़ आ गई ना सामने, इन अकल को उसमें इन्वॉल्व करो कि मेरा जो है मतलब मसला क्या है, इस वक्त असल अल्लाह पाक क्या चाहता है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल पर अमल हो जाएगा। कि वो जिक्र बेहतरीन है जो आपको गुनाह से रोके, वो जिक्र बेहतरीन है जो आपको गुनाह से रोके, तो उनकी बात पे अमल हो जाएगा। अब कहते हैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कौन से थे? नक्शबंदी थे, चिश्ती थे, कौन थे? वो कुछ भी नहीं थे, बल्कि सब उन्हीं के ज़रिए से, समझ में आ गई ना बात? सब जो भी उसके ऊपर बात पर अमल करेगा तो वही है, उनके लिए खैर है। तो ये मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि वो खौफ़ कल्बी अगर अमली करना चाहते हो तो आज भी कर सकते हो, और अगर नजरी करना चाहते हो तो फिर ठीक है। तो ये बात है, ये कोई आ गया है खत। किसी के वालदा को फालजर का अटैक हुआ है, बाया बाजू टांग और चेहरे का कुछ हिस्सा मुतासर हुआ है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये अभी चूंकि थोड़ी देर में मगरिब के बाद, चूंकि रात शुरू हो जाएगी और ये रात 27वीं के हैं, 27वीं की रात होने की वजह से बहुत ज़्यादा कवी इम्कान है, कि गुज़श्ता में कोई ऐसी बात नहीं थी, तो उसका मतलब है कि इन दो रातों में कोई शायद हो, तो इसमें इम्कान ज़्यादा होता है 27वीं में वैसे भी। तो एक तो ये कि एक दूसरे के साथ कोई बात करते हुए नज़र ना आए। हाँ जी, और आमाल में लगे रहें। ये मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त तो लोग समझते हैं शायद हम इतकाम में है ही नहीं। हाँ जी, नहीं ऐसी बात नहीं है, इसमें भी इतकाफ में होते हैं लोग। हाँ जी, आज़ाद नहीं होते, अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे का मतलब खाना खाने के साथ बातें करना ज़रूरी तो नहीं है। हाँ जी, तो ये है कि वो बात करते हुए कोई नज़र ना आए, मेरे पास ना आए, मेरे सामने खड़े हो ना हो, हाथ मिलाने की ज़रूरत कोई नहीं है, चाहे वो आज ही रात आए चाहे पहले आए, ये रातें इन चीज़ों की नहीं है। और एक बात याद रखिए, जिनके साथ आप हाथ मिला रहे हैं इस नीयत से कि मुझे उसका मिसाल के तौर फ़ायदा हो, तो उसकी दिल जो है ना वो जिस्म का बादशाह है, तो हाथ के लमस से अगर दिल आपसे दूर हो जाए तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। हाथ बेशक करीब हो लेकिन दिल दूर हो जाए तो नुकसान हो जाता है। इस वजह से मतलब कोई भी ना रास्ते में खड़ा हो, ना उधर कमरे में आ जाए, ना कोई सवाल मसला पूछे। मेरे खुद शेख, मेरे शेख के साथ कि मैंने पूछा मसला हजरत से, तो हजरत ने मुझसे फरमाया 27वीं की थी, ये बात सुबह नहीं पूछ सकते। मैंने कब पूछ सकता? अच्छा जाओ जाओ जिक्र करो। हाँ जी, मुझे नहीं बताया मसला। हाँ जी, क्यों? अगर मैं मुझे उस मसला फिर मैं कुछ और भी पूछ सकता था, तो हजरत ने उसूल बता दिया, ये बात मैं करो ना, क्या उसी दिन ही साथ सारे काम करने हैं? तो ये जो बात मैं अर्ज़ करता हूँ कि बस न कोई मसला पूछे, न कोई अपना हाल सुनाए, न कोई दुआ की दरख्वास्त करे, सबके लिए दुआ इंशाल्लाह हम करेंगे, न जो है ना मतलब ये कि मिलने की कोशिश करें, ये मिलने जुलने वाली बातें आज की रात नहीं है। इस बात आप जो है ना मतलब मेरे साथ ताउन करें, अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएँ, और वक्त को इस्तेमाल करें, कमाएं, जिक्र करें, तिलावत करें, दुआएं करें, नवाफिल पढ़ें, ये सब चीज़ें रास्ते आपके लिए खुले हैं। हाँ, इज्तमाही अमल में शामिल होना सबसे ज़्यादा अहम है। अच्छा, कोई माली सदका वगैरह अगर कोई करना चाहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो तो एक अमल है। तो पहले से सोचे कि किसको देना है ताकि इस पर आपको रिसर्च ना करना पड़े, तो जाकर उसको देख लें, बस बात ख़त्म। वो देने वाला अमल आपका रात में हो जाए। तो लेकिन सोचे पहले से कि किसको देना है ताकि आपके आपको फिर बाद में यानी उसके लिए वक्त लगाना ना पड़े, ठीक है ना। तो दिया जा सकता है, तो अमल है, जैसे नफल पढ़ते हैं तो इस तरह ये भी एक अमल है, ये किया जा सकता है। तो बहरहाल ये कि अगर कोई शख्स इस तरह करना चाहते हैं तो कर सकता है, और हम भी कोशिश करेंगे कि आज हम मुख्तलिफ़ तरीके से निज़ाम चलाएँ, यानी आमाल की तरफ लोगों को ज़्यादा लाएँ। पहले जहन साजी की तरफ था ना, वो भी अच्छा काम है, लेकिन मैंने आपको बताया ना तकरीरों के इरादे तो ये नहीं है। तो अब ये है कि आमाल की तरफ, तो आमाल क्या है? ज़िक्र है, तिलावत है, दुआएँ हैं, नवाफिल है, हाँ ये चीज़। तो दरमियान दरमियान में जो वक्फे हो गया हम इसमें यही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। और अपने औकात को खूब इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाह, मुख्तसर जिक्र करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा illallah la ilaha 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 illallah muhammadur rasulullah la ilaha illahu 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 ilaha illahu la 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 ilaha illahu allahumma salli ala sayyidina wa ala muhammad wa sallam hak 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 हक 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 अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद अल्लाह 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 Allah 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 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا اپنی جگہ پہ پہنچے